राग मारू सोलहे महला तीजा। हुक्मी सहजे श्रेष्ठ उपाई, कर कर वेखे अपनी वडियाई।
आज के सत्संग के वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। बहुत विचार करने के योग्य है, समझने के योग्य है। आप फरमाते हैं कि ये रचना या दुनिया, जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, ये सब अपने आप ही पैदा नहीं हुई। इसको कोई ना कोई पैदा करने वाला है, चलाने वाला है। वह कौन है? एक परमात्मा है, परमेश्वर है, अकाल पुरुष है, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हैं। उस एक परमात्मा ने दुनिया की रचना की है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जग जीवन साचा एक को दाता। वह परमात्मा एक है, वह सच्चा है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। कुल आलम का वही एक परमात्मा है। ये नहीं कि हिंदुओं का कोई और परमात्मा है, सिखों मुसलमानों ईसाइयों का कोई और परमात्मा है, हिंदुस्तान के रहने वालों का भी वही परमात्मा है, अमेरिका और अफ्रीका के रहने वालों का भी वही परमात्मा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सबना जिया का एक को दाता। जो कुछ भी आप आंखों से देख रहे हैं, इसको पैदा करने वाला एक परमात्मा है, जो सबका दाता है, सबका बादशाह है। मुसलमान फकीरों ने उस परमात्मा को रब्बुल आलमीन कहकर याद किया है, रब्बुल मुसलमीन कहकर याद नहीं किया। वह परमात्मा जो कि कुल आलम का है, वह परमात्मा नहीं जो कि सिर्फ मुसलमानों का है। ऋषि मुनि हमेशा से उस परमात्मा को एक एका कहते चले आ रहे हैं। हमेशा से वही परमात्मा चला आ रहा है। सतयुग में भी वही था, त्रेता और द्वापर में भी वही था, अब भी वही है, आगे भी उसी परमात्मा ने रहना है। गुरु नानक साहब जपजी साहब की पहली पौड़ी में फरमाते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हमारे अनुभव में एक ही ऐसी चीज आई है जो आद जुगाद से सच ही चली आ रही है, जो कभी नाश नहीं होती, कभी फना नहीं होती। वह कौन है? वह एक परमात्मा है, एक परमेश्वर है। उस परमात्मा ने किस तरह दुनिया पैदा की है? आप कहते हैं, हुक्मी सहजे सृष्टि उपाई। उस परमात्मा ने अपने हुक्म के जरिए सारी सृष्टि की रचना की है। उसको हुक्म कह लो, शब्द कह लो, नाम कह लो, वह क्रिएटिव पावर है, जिसको गुरु नानक साहब ने कई लफ्जों से समझाने की कोशिश की है। ऋषियों मुनियों ने उस क्रिएटिव पावर को आकाशवाणी, राम नाम, राम धुन कहा है। मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा है, कुन कहा है। हजरत ईसा ने उसको वर्ड कहकर याद किया है। चीन के महात्माओं ने उसको ताओ कहकर बयान किया है। आप कहते हैं कि परमात्मा ने शब्द के जरिए सारी रचना की है। आप आगे कहते हैं, कर कर वेखे अपनी वडियाई, के मालिक ने उस शब्द, नाम या हुक्म के जरिए केवल रचना ही नहीं की, वह रचना करके उसको देख देख कर खुश हो रहा है। हमारे मन में ख्याल आता है कि परमात्मा को रचना देखकर क्या खुशी हो सकती है, क्योंकि जब हम दुनिया में नजर डालते हैं, हजारों लोग रात को भूखे सोते हैं, आधी दुनिया के शरीर पर कपड़ा नहीं है, दुनिया में कितनी औरतें विधवा हो रही हैं, कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, अस्पताल बीमारों से भरे पड़े हैं, लाखों लोग बीमारी से मर रहे हैं, दुनिया में भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है, पता नहीं मौत कब आ जाए, किसके हाथों आ जाए, कौन सी जगह आ जाए। ऐसी रचना को देखकर परमात्मा को क्या खुशी महसूस होती होगी? ये हमारा देखने का ढंग है, हम इस दृष्टि से रचना को देखते हैं, लेकिन रचना करने वाला उसको किसी और नजर से देखता है। आप सिनेमा में जाते हैं, जब डायरेक्टर फिल्म बनाता है, उसमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, उसमें पति भी है, उसमें पत्नी भी है, बाल बच्चे भी हैं, कईयों से नफरत भी है, मारपीट भी है, लोग एक दूसरे को छुरे भी मारते हैं, कई बार तो हम इतने भावुक हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको देखकर रोना शुरू कर देते हैं। कई बार भावुक होकर उनसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। जो कुछ फिल्म में देखते हैं हम उसको असल समझ लेते हैं। इसलिए कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं। लेकिन डायरेक्टर को अपनी फिल्म की असलियत का पता है। जब वह कामयाब हो जाती है, हिट हो जाती है, वह बड़ी खुशी महसूस करता है कि मेरी फिल्म बहुत ही कामयाब है। उसको पता है कि इसमें जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनकी कोई असलियत नहीं है। जिन्होंने पति पत्नी का, बाल बच्चों का, दोस्त और दुश्मन का पार्ट किया है उनकी कोई असलियत नहीं है। कोई 2-2.5 घंटे के लिए पति बन गया, 2-2.5 घंटे के लिए बच्चा बन गया, कोई दोस्त बन गया, कोई दुश्मन बन गया। फर्जी तौर पर कभी किसी का खून निकल गया, कभी किसी का गला काट दिया गया, लेकिन उसकी असलियत कुछ नहीं है। डायरेक्टर को फिल्म की असलियत का पता है। अगर हम भी उसकी असलियत अच्छी तरह समझ लें तो हमें भी उस फिल्म को देखने का कभी दुख नहीं होना चाहिए, खुशी नहीं होनी चाहिए। अगर हम उसको असल समझने लग जाएं तो हम उसका दुख और सुख महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर फिल्म में पार्ट करने वाला नायक नायिका को अपनी पत्नी समझना शुरू कर दे, जब स्टेज से उतरेगा वह तो उसकी पत्नी नहीं रहती, वह तो किसी और की पत्नी है, वह दुखी हो जाएगा। अगर उनको ही अपने बाल बच्चे समझना शुरू कर दे, वह दुखी होना शुरू कर देगा। अगर फिल्म के अंदर के दुश्मन को दुश्मन मानना शुरू कर दे, उसकी हालत तरस करने योग्य हो जाएगी। अगर वह असलियत समझ लेता है कि मैं एक्टर हूँ, मुझे तो ये पार्ट करने को मिला है, ना ये मेरी पत्नी है, ना ये मेरे बच्चे हैं, ना ये मेरा दुश्मन है, मुझे तो 2-2.5 घंटे पार्ट अदा करके स्टेज से उतर जाना है, फिर ना वह कोई सुख महसूस करता है, ना वह कोई दुख महसूस करता है। इसी तरह परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की है, उसको ना कोई दुख महसूस होता है, ना कोई इस रचना का सुख महसूस होता है। परमात्मा को पता है कि इस रचना की कोई असलियत नहीं है। इन सब को नष्ट हो जाना है, इन सब का लेन देन का संबंध है, इनमें से ना आज तक कभी किसी का कोई बना है, ना कभी किसी का कोई बन ही सकता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे अपना खेल रचाया, आवागौन पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्तारा। आप फरमाते हैं कि उस परमात्मा ने खुद संसार रूपी खेल की रचना की है, खुद ही यहाँ आवागमन का सिलसिला बनाया है, और वह खुद ही गुरमुखों को सच्चे नाम से जोड़कर मरण जन्म के बंधनों से आजाद करता है। आप फरमाते हैं, माया मोह नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई। आप कहते हैं कि ये संसार मोह माया की बाजी या खेल है। मनमुख इसको सच समझकर इसके अंदर फंसकर ख्वार और दुखी होते हैं, लेकिन गुरमुख परमात्मा से लिव जोड़कर इससे निर्लिप्त रहते हैं। गुरु साहब और संत महात्मा संसार को परमात्मा का खेल, परमात्मा की बाजी, परमात्मा की लीला, परमात्मा का नाटक आदि कहते हैं, क्योंकि यह संसार खेल, लीला या नाटक की तरह देखने में सच्चा लगता है, पर असल में इसकी कोई असलियत नहीं है। जो असली चीज है वह आत्मा है, वह परमात्मा की अपनी है। इसलिए रचना को देखकर परमात्मा को कोई दुख सुख नहीं महसूस होता। गुरु साहब कहते हैं कि वह रचना को बढ़ती फूलती देखकर बड़ी खुशी महसूस करता है। इसलिए गुरु साहब हमें समझाते हैं कि उस परमात्मा ने जरूर अपने हुक्म के जरिए दुनिया की रचना की है, और वह अपनी लीला, नाटक या खेल देखकर प्रसन्न हो रहा है। अगर हम रचना के प्यार में फंस जाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। अगर हमें रचना की असलियत का पता चल जाएगा, हम इसके दुख सुख से हमेशा के लिए बचे रहेंगे।
आपे करे कराए आपे, हुक्मे रहे आसमाई है।
गुरु साहब कहते हैं कि केवल उस परमात्मा ने रचना ही नहीं की, बल्कि इसको चलाने वाला, संभालने वाला, इसका ख्याल रखने वाला भी वही है। हम समझते हैं कि हम इस दुनिया को चला रहे हैं। हम ना होते तो पता नहीं सारी दुनिया को खड़े ही हो जाना था। लेकिन गुरु साहब कहते हैं कि जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, उसको हमसे कहीं ज्यादा फिक्र है। वह खुद ही सारी देखभाल करता है, खुद ही रचना को चला रहा है। वह शब्द स्वरूप होकर या नाम स्वरूप होकर हर चीज में समाया हुआ है, सारी सृष्टि को चला रहा है। हम सबके अंदर बैठकर हमारी देखभाल कर रहा है, हमारी रखवाली कर रहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शबद रहे सब ही से न्यारा, शबद करे सब जीव गुजारा, शबद जानियो सबका सारा, शबद मानियो होए उबारा। वह शबद सबका सार है और वही सबका आधार है, वही सबका राजक या पोषक है। गुरु साहब समझाते हैं कि वह परमात्मा शब्द रूप होकर रचना के जरे जरे पत्ते पत्ते में समाया हुआ है। वह इस रचना का, इसके हर जीव का, हर चीज का ख्याल रख रहा है, सबका प्रतिपालक है।
माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बुझे को बिचारा।
गुरु साहब कहते हैं कि हम सब दुनिया के जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सो रहे हैं। जिस परमात्मा ने ये रचना की है, जो हमारा दाता है, हमारी देखभाल करने वाला है, इस रचना को चलाने वाला है, उसको हम बिल्कुल भूल चुके हैं। माया क्या है? जो कुछ भी आंखों से नजर आ रहा है वह सब माया है, भ्रम है, छल है। ये देखने में सच लगता है, लेकिन असल में इसकी कोई असलियत ही नहीं है। जीव अज्ञानता के कारण इसको सच्चा और पक्का समझता है, लेकिन सच्चा केवल एक प्रभु है। गुरु साहब कहते हैं कि जब तक हम रचना करने वाले की भक्ति में नहीं लगेंगे, रचना करने वाले से हमारा प्यार नहीं होगा, हमारा देह के बंधनों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। वह केवल गुरुमुख हैं जो कि इस रचना की असलियत को समझते हैं, इसलिए वह दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मैल में लिपत नहीं होते। वह घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में नहीं जाते, उनको इसकी असलियत का पता है, इसलिए वह इधर से अपने ख्याल को निकालकर मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में रखते हैं।
आपे नजर करे सो पाए, आपे मेल मिलाई है।
अब गुरु साहब कहते हैं कि जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, वह परमात्मा भी कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, देह या वजूद के अंदर बैठा हुआ है। जिसको भी मिला है अपने अंदर मिला है, और जिसको भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरमुख होवे सो काया खो जाए, होर सब परम पुलाई। जो मालिक के आशिक हैं, गुरमुख हैं, भगत और प्यारे हैं, वह हमेशा शरीर या देह के अंदर जाकर परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप आगे कहते हैं, जिसनो दे सोई जन पावे, होर क्या को करे चतुराई। जिस पर वह परमात्मा दया करता है, बख्शिश करता है, वही उसको अपने अंदर पाता है। यहाँ किसी की चतुराई, किसी की बुद्धि, किसी की अकल काम नहीं देती। मन में ख्याल आता है कि वह परमात्मा तो सचखंड में बैठा हुआ है, हम इस माया के जाल में उलझे बैठे हैं। वह हम पर दया किस तरह करता है, वह हम पर बख्शिश किस तरह करता है, गुरु साहब आगे इशारा करते हैं।
आपे मेले देवडे आई, गुरे प्रसादी कीमत पाई।
गुरु साहब कहते हैं कि जब वह परमात्मा चाहता है कि हम उसकी भक्ति में लग जाएं, हमारे अंदर उसका प्यार पैदा हो जाए, हम अपने अंदर उसके साथ मिलाप कर सकें, तो वह हमें गुरमुखों की संगत दे देता है, गुरमुखों की सोबत दे देता है। जब भी हम मालिक की भक्ति कर सकेंगे, गुरमुखों के जरिए कर सकेंगे, साधुओं संतों महात्माओं के जरिए कर सकेंगे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सतगुर ते हर पाइये पाई। भाई, जब भी तू उस परमात्मा से मिलेगा, गुरमुखों के जरिए मिलेगा, साधुओं संतों महात्माओं के जरिए मिलेगा। हमारा मन संगत और सोबत का बहुत जल्दी असर लेता है। आप चोरों के पास चले जाएं, चोरी करने का ख्याल पैदा हो जाएगा। शराबियों के पास चले जाएं, शराब पीने के विचार आने शुरू हो जाएंगे। माल्य के भगत और प्यारे मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं, उनको देखकर अपने आप हमारे अंदर भी मालिक का प्यार पैदा होना शुरू हो जाता है। इसलिए गुरु रामदास जी हमारी तरफ से मालिक से प्रार्थना करते हैं, गोविंद जियो सत्संगत मेल हरत्याये। हे परमात्मा, हमें अपने भक्तों की, प्यारों की, सतगुरु की संगत दे, शुभ दे, ताकि तेरा पता चले, तेरी भक्ति करने के तरीके और साधन का पता चले। गुरुमुखों के सत्संग में जाकर पता लगता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा के दरमियान रुकावट किस चीज की है और वह रुकावट किस तरह रास्ते से दूर की जा सकती है। ये जो भी समझ है, ये केवल गुरुमुखों के सत्संग, गुरुमुखों की संगत में जाकर आती है। इसलिए जब तक हमें गुरुमुखों की संगत और सुबत प्राप्त नहीं होती, हम कभी मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर साचे पावे सा पूजा होवे। भाई, सबका मन करता है कि हम वापस जाकर परमात्मा से मिलें, लेकिन मालिक को भाएगा, मालिक को मंजूर होगा, तभी तू मालिक की असली भक्ति कर सकेगा। अगर मालिक को ही तुझे अपने साथ मिलाना मंजूर नहीं, तो तू किस तरह अपनी भक्ति में कामयाब हो सकता है। इसलिए गुरु साहब यहाँ समझाते हैं कि जब भी हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, गुरुमुखों के जरिए कर सकते हैं, साधुओं संतों महात्माओं के जरिए कर सकते हैं।
मन मुख बहुत फिरे बिलादी, दूजे पाए खुआई है।
जो मनमुख लोग हैं, वह गुरुमुखों की संगत नहीं करते, गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर नहीं चलते, वह इस रचना को ही असल समझकर बैठे हैं। वह कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ाई में फंसे हुए हैं, शराबों कबाबों की लस्तों में फंसे हुए हैं, लोगों के गले काटने में फंसे हुए हैं, इंद्रियों के भोगों के गुलाम बने हुए हैं। इसका क्या नतीजा होता है? वह बार बार मरते हैं, बार बार जन्मते हैं। वह उस एक परमात्मा को भूले बैठे हैं, सारी रचना के मोह या प्यार में फंसे बैठे हैं। वह एक की भक्ति नहीं करते, अनेक की भक्ति में लगे हुए हैं। वह परमात्मा एक है, बाकी सबको गुरु साहब ने दूजा कहा है, तुलसी साहब ने इनको गैर कहा है, गुरु नानक साहब इस रचना को भ्रम कहकर भी बयान करते हैं। हम उस एक की तो भक्ति नहीं करते जो हमारा अपना है, परायों की भक्ति में फंसे हुए हैं, परायों के मोह या प्यार में दिन रात फंसे हुए हैं। इसलिए यहाँ विलाप करते फिरते हैं, रोते पीटते हैं, दुखी हुए फिरते हैं। मौत बाद में होती है, अगले शरीर का पिंजरा पहले ही हमारे लिए तैयार खड़ा किया जाता है। देह में पीछे आते हैं कि फिर मौत आंखों के आगे आ जाती है। 10 नंबरियों की तरह हरेक को हथकड़ी लगी ही रहती है। परमात्मा ने इंसान का जामा अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा था, लेकिन हमने उससे फायदा ना उठाया, गुरुमुखों की संगत ना की, गुरुमुखों की सोबत ना की, उनके सत्संग में जाकर रचना करने वाले से प्यार ना किया, रचना करने वाले की भक्ति ना की, सारी उम्र रचना के ही मोह में फंसे रहे, रचना के ही प्यार में फंसे रहे।
हो मैं माया विचे पाई, मन मुख पूले पत गवाई।
हम दुनिया के मनमुख जीव क्यों यहाँ आकर रचना में भूले फिरते हैं? गुरु साहब कहते हैं कि मालिक ने होमे के जरिए इस दुनिया की रचना की है। ये होमे है, रचना का मोह या प्यार है, जिसके कारण हम हमेशा रचना का हिस्सा बने रहते हैं। जब ये होमे दूर हो जाता है, हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, होमे बिख पाए जगत उपाया, सबद वसे बिख जाए। हम होमे के कारण ही रचना का हिस्सा बने बैठे हैं। जब हमारे अंदर शब्द बस जाता है, ये होमे का जहर हमारे अंदर से निकल जाता है। मनमुख लोग होमे के कारण इस रचना में आकर भूले फिरते हैं। क्या भूले फिरते हैं? कि ये जो भ्रम है, जिसे नाश हो जाना है, जिसे फना हो जाना है, उसको असल समझे बैठे हैं। इसलिए गुरु साहब हमें प्यार से समझाते हैं कि हम लोग मन के पीछे लगकर होमे की बीमारी में फंसकर इस रचना में भटकते फिरते हैं, रोते फिरते हैं। हमें रचना में, इसके मोह में कभी सुख नहीं मिल सकता, शांति प्राप्त नहीं हो सकती।
गुरुमुख होवे सो नाए राचे साचे रहे समाई है।
जो गुरमुख हैं, मालिक के आशिक हैं, मालिक के प्यारे हैं, वे अंदर शब्द की कमाई करके मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार के रंग में रंगे हुए हैं। गुरु साहब कहते हैं कि ना इनको घर बार छोड़ने की जरूरत होती है, ना उनको बेटे बेटियां त्यागने की जरूरत है, ना उनको भगवे कपड़े पहनने की जरूरत पड़ती है, ना जंगलों पहाड़ों में छिपने की जरूरत पड़ती है। वह दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मैल में लिपत नहीं होते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नाम रते परमहंस बैरागी निज करताड़ी लाई है। जो उठते बैठते चलते फिरते शब्द या नाम के रंग में रंग जाते हैं, वह घर बार में रहते हुए भी परमहंस बैरागी हैं, क्योंकि उनकी लिव 24 घंटे अपने इष्ट की तरफ है, अपने असल की तरफ है। जो हमारे अंदर रूह और मन की जगह है, वह हर एक की आंखों के पीछे है, जिसको गुरु नानक साहब ने घर दर कहा है, मुक्ति का दरवाजा कहा है। यहाँ दोनों आंखों के पीछे से ख्याल उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। हमें इसी फैले हुए ख्याल को गुरुमुखों के समझाने के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करते हैं, तो हमें अपने अंदर ही समझ आनी शुरू हो जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो कि मालिक की दरगाह से आ रही है, वह हमारे अंदर है। हम अंदर उस आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं, उस शब्द की रोशनी और प्रकाश को अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं। उस आवाज के जरिए, निर्मल नाद के जरिए, धुन के जरिए, शब्द की धुनकार के जरिए हम अपने घर के रास्ते का रुख कायम कर लेते हैं। उस ज्योति के जरिए, उस प्रकाश के जरिए अंदर अपना रूहानी सफर तय करना शुरू कर देते हैं। जिस शब्द या नाम का गुरु साहब जिक्र करते हैं, उसके अंदर धुनकार धुने भी हैं, उसके अंदर ज्योति भी है, उसके अंदर प्रकाश भी है। इसलिए गुरु रामदास जी ने कहा था, 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चुई जाए। आंखों के नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लस्तें हैं। वह जो रस का भरा हुआ अमृत है, उसको ज्योत कह लो, धुनकार धुन कह लो, अमृत कह लो, शब्द या नाम कह लो, एक ही बात है, वह 24 घंटे आंखों के पीछे बरस रहा है। जिस अमृत को पीकर हमें अमर होना है, मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हासिल करना है, वह अमृत कभी किसी को आज तक बाहर से नहीं मिला। वह अमृत तो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। जो खुशकिस्मत भाग्यशाली अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस अमृत को पीकर अमर हो जाता है। नहीं तो अमृत तो हर एक के अंदर बस रहा है, बारिश तो हर एक के अंदर हो रही है। जो अपने बर्तन को सीधा कर लेता है, उसका बर्तन बारिश के पानी से भर जाता है। जिनका बर्तन ही उल्टा रहता है, उनके बर्तन में पानी की एक बूंद भी नहीं जाती। बारिश परमात्मा सबके लिए करता है, ये नहीं कि एक के लिए करता है दूसरे के लिए नहीं। सूरज सबके लिए निकलता है, धूप सबके लिए होती है। जो धूप में बैठते हैं, वह सर्दियों में धूप सेक लेते हैं। जो छाया में बैठे हुए हैं, वह थर थर कांपते रहते हैं। आप फरमाते हैं कि वह राम नाम की ज्योति हर एक के अंदर जलती है, वह राम नाम की धुन हर एक के अंदर धुनकारें दे रही है। हमें उस धुन को अपने अंदर सुनना है, उस ज्योति को अपने अंदर में देखना है। इसलिए हर एक मंदिर और गुरुद्वारे के अंदर ज्योति भी जलाई जाती है, घंटे और शंख जैसी आवाज भी पैदा की जाती है। हर एक गिरजे के अंदर घंटा बजाया जाता है, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, मस्जिद के अंदर बांग दी जाती है, नकारा बजाया जाता है, चिराग जलाए जाते हैं। ये ऋषियों मुनियों ने, साधु संतों महात्माओं ने, पीरों पैगंबरों ने, गुरु साहिबान ने हमें समझाने के लिए बताया था कि तुम्हारा शरीर असली गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है। इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाकर शब्द के घंटे की आवाज को सुनो, शब्द की ज्योति के दर्शन करो। अगर तुम अपने अंदर उस रूहानी सफर को तय करना चाहते हो, वापस मंजिले मकसूद पर पहुंचना चाहते हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाहर मुखी होकर ज्योति जलानी शुरू कर दो, बाहर घंटे और शंख बजाने शुरू कर दो। महात्मा हमारे ख्याल को अंतर्मुख करने की कोशिश करते हैं, बाहरमुख नहीं करते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन शब्दे अंतर अंधेरा, न वस्त्र है न चूके फेरा। उस शब्द या नाम की कमाई के बिना ना तो तुम्हारे अंदर से कभी अज्ञानता का अंधेरा दूर हो सकेगा, ना तुम्हें कभी परमात्मा मिल सकेगा, ना तुम्हारा कभी देह के बंधनों से छुटकारा हो सकेगा।
गुरते ज्ञान नाम रतन पाया, मनसा मार मन माहे समाया।
गुरु साहब कहते हैं कि ये जो नाम की कमाई करने का तरीका है, इसका गुरुमुखों से पता चलता है, साधुओं संतों महात्माओं से पता चलता है। जब हम उस नाम की कमाई करनी शुरू कर देते हैं तो मन की सारी इच्छाएं, तृष्णाएं, पिछले संस्कारों का भय, मौत का डर सब हमारे अंदर से निकल जाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुकत न पावे कोई, बिन सतगुर को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। परमात्मा ने खुद ये बनत बनाई है, खुद ये तरीका बनाया है कि नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलती और सतगुरु के बिना नाम की कमाई की समझ नहीं आती। आप कहते हैं, एक को अमर एका पातशाही जुग जुग सरकार बनाई है। वह परमात्मा एक है, उसका हुक्म या यूनिवर्सल लॉ और विधान भी एक है। वह परमात्मा सबका दाता है, सबका बादशाह है। संत महात्मा उस परमात्मा की भेजी हुई सरकारें होती हैं। वह उसके हुक्म में से आती हैं, दुनिया में आकर उसका हुक्म का पालन करती हैं और हुक्म का ही प्रचार करती हैं और हमें साथ लेकर उस शब्द या नाम या हुक्म में ही समा जाती हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि जब भी आशा मनसा मोह माया और भ्रमों का नाश होगा, शब्द की कमाई द्वारा होगा। जब भी मन से आशाएं तृष्णाएं निकलेंगी, शब्द की कमाई करने से निकलेंगी। जब भी मन में शांति आएगी, केवल नाम की कमाई द्वारा आएगी। और जब भी नाम की कमाई करने का भेद मिलेगा, गुरुमुखों से मिलेगा।
आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।
आपने शुरू में कहा था कि मालिक अपनी दुनिया को बढ़ता फूलता देखकर खुश होता है। अब समझाते हैं कि ये कर्ता का अपना खेल है, ये उस मालिक की लीला है। गुरु साहब कहते हैं, आपे खेल करे सब करता। वह परमात्मा जो करता है, खुद ही करता है। ऋषियों मुनियों ने भी इस रचना को लीला कहकर बयान किया है, खेल कहकर बयान किया है। हम इसको असल समझ लेते हैं, इसलिए दिन रात दुखी होना शुरू कर देते हैं। जब वह परमात्मा हमें इस खेल से निकालना चाहता है तो हमें इसकी असलियत का ज्ञान दे देता है और हम इन दुखों और मुसीबतों से हमेशा के लिए बच जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि दुनिया में दो तरह के जीव हैं, एक गुरमुख हैं, दूसरे मनमुख हैं। दोनों तरह के जीव मालिक ने खुद पैदा किए हैं और ये भी उसके अपने हाथ में है कि जिसको चाहता है गुरमुख बना लेता है। गुरमुखों और मनमुखों में क्या फर्क है? मैंने पहले अर्ज की है कि मनमुख रचना को सच्चा समझकर उसके प्यार में उलझे हुए हैं, गुरमुख परमात्मा को सच्चा समझकर उसके प्यार में मस्त हैं। गुरमुख कैसे बनते हैं? मालिक की अपनी दया मेहर से बनते हैं। आप हमें प्यार से समझाते हैं कि जब तक हम पर आदि कर्ता की दया मेहर बख्शिश नहीं होती, हमें इस खेल की, इस लीला की जो परमात्मा ने ये रचना पैदा की है, कभी समझ नहीं आती। जब भी इसकी समझ आएगी, उसकी दया मेहर और बख्शिश से आएगी। गुरु अर्जुन देव जी एक जगह लिखते हैं, जिस आप पुलाए सोई पुलै, सो बुझे जिसे बुझाएंदा। हे परमात्मा, जिससे तू मिलना चाहता है उससे तू मिल लेता है, जिसे तू भुलाना चाहता है वह यहाँ ही दिन रात भ्रमों में फंसकर भूला फिरता है। इसलिए आप फरमाते हैं कि जिसको तू यहाँ से नहीं निकालना चाहता, वह किस तरह वहमों भ्रमों को छोड़कर यहाँ से निकल सकता है।
सतगुर सेवे आप गवाए, प्रीतम शब्द सुख पाए।
आप फरमाते हैं सतगुरु सेवे कि सतगुरु की सेवा के जरिए ही हम परमात्मा को मिल सकते हैं। मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं कि सतगुरु की सेवा से मतलब है कि उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर उनके कहने के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके शब्द के साथ जोड़ना है। ये सतगुरु की असली सेवा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सतगुर सेवे ताम मल जाए, जीवत मरे हर स्यों चित लाए। सतगुरु की सेवा के जरिए ही तुम्हारे मन की मैल दूर होगी। और सतगुरु की सेवा क्या है? जीवत मरे हर स्यों चित लाए, जीते जी मरो और मालिक से प्यार करो, यही सतगुरु की असली सेवा है। जीते जी मरना क्या है कि सिमरन और ध्यान के जरिए नौ द्वारों में से ख्याल को निकाल कर आंखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ो। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। जो सुरत शब्द की सेवा करते हैं उनका दुनिया से मोह निकल जाता है, परमात्मा के साथ मोह या प्यार पैदा हो जाता है। आप फरमाते हैं कि अगर हम असली सुख हासिल करना चाहते हैं, असली शांति प्राप्त करना चाहते हैं, हम केवल सतगुरु की सेवा के जरिए हासिल कर सकते हैं, उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द या नाम की कमाई करके हासिल कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्द सुरत सुख उपजय प्रभ रातो सुखसार। जब हम सुरत शब्द का अभ्यास करके मालिक की भक्ति और मालिक के प्यार के रंग में रंग जाएंगे तो इस रचना में से भी हमें कुछ सुख और शांति के सांस प्राप्त होंगे। बेटे बेटियों से सुख नहीं मिलता, कौमों मजहबों मुल्कों की मान बढ़ाई से सुख नहीं मिलता, धन दौलत से शराबों कबाबों की लस्तों से सुख नहीं मिलता। ये जो भी सुख नजर आते हैं टेम्परेरी हैं, अस्थाई हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता दुखों में बदलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस चीज के आने की खुशी होती है उसके जाने का जरूर हमें गम और चिंता लगी रहती है। जब तक वह चीज नहीं मिलती जो कभी नाश और फना ना हो, हमारे पास से कभी ना जाए, हम सदा के लिए सुख किस तरह हासिल कर सकते हैं? गुरु अमरदास जी ने कहा था, जिन्नी कर जाता अपना से सुखी पाई। जो शख्स अपने घर वापस पहुंच जाते हैं, असली सुख और शांति उन गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है। इसलिए जब भी हम अपने घर पहुंचेंगे, जब भी मालिक के प्यार के रंग में रंग जाएंगे, केवल सतगुरु की सेवा के जरिए उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर सुरत शब्द का अभ्यास करके।
अंतर प्यार भक्ति राता सहज मते बन आई है।
सतगुरु की सेवा का क्या फल मिला? हृदय में मालिक से मिलने की विरह और तड़प पैदा हो गई, मालिक का प्रेम पैदा हो गया और हम उस मालिक की भक्ति में लग गए। जब अंदर सच्ची विरह पैदा हो गई, तड़प पैदा हो गई, तो परमात्मा ने अपने आप हमें अपने साथ मिला लिया। जब तक हम रचना के खिलौनों से खेलते रहते हैं, बेटे बेटियों के प्यार में लगे रहते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की मान बढ़ाई में खोए रहते हैं, वह मालिक भी हमें भूला रहता है। जब हर तरफ से ख्याल को निकाल कर सिर्फ मालिक में जज़्ब या लीन कर लेते हैं, वह भी दया मेहर करके हमें अपने साथ मिला लेता है।
दुख निवारण गुर ते जाता आप मिलिया जग जीवन दाता जिसनो लाए सोई बूझे पो परम शरीरों जाई है।
हम सब दुनिया के जीव दुखी हैं। गुरु नानक देव जी ने खुद ही कहा है, नानक दुखिया सब संसार। सब दुनिया के जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों से घिरे बैठे हैं। आप फरमाते हैं कि जब मालिक की भक्ति मालिक के प्यार के रंग में रंग जाएंगे तो इन दुखों से हमारा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। जब तक इस दुनिया के रंग में रंगे हुए हैं, हम सुख और शांति हासिल नहीं कर सकते। जब गुरुमुखों के पास जाकर शब्द या नाम की कमाई करके मन और माया के दायरे से पार जाकर मालिक की भक्ति के रंग में रंग जाएंगे, मालिक के प्यार के रंग में रंग जाएंगे, तो हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। जब नाम की कमाई करके हम अपने अंदर से अपने आप को निकाल देंगे, हौमे को अपने अंदर से निकाल देंगे, सब कुछ मालिक का समझना शुरू कर देंगे, अपनी हस्ती मालिक के अंदर जज्ब कर देंगे, भ्रम और भय से आजाद हो जाएंगे, तब कहीं जाकर हमें सुख के सांस आएंगे। फिर जाकर हम सच्चा सुख, सच्ची शांति हासिल कर सकेंगे। अपने अंदर से अपना आप कैसे निकाल सकेंगे, भ्रम और भय से कैसे आजाद हो सकेंगे, आप आगे इशारा करते हैं।
आपे गुरमुख आपे देवे, सच्चे शब्द सतगुर सेवे, जरा जम तिस जो ना साके, साचे स्यों बन आई है।
आप फरमाते हैं कि असल में दुनिया में मालिक ही मालिक है, मालिक के स्वय कुछ भी नहीं है। मांगने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है, गुरुमुखों में भी वही है, गुरुमुखों को गुरुमुख बनाने की बढ़ाई देने वाला भी वही है। इस बात की समझ कब आती है कि जो कुछ है मालिक ही मालिक है। जब हम गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर अपनी आत्मा को अंदर प्रभु में लीन कर लेते हैं। कहने को तो हम सब कह देते हैं कि मालिक सर्वव्यापक है, वह पत्ते पत्ते जरे जरे में समाया हुआ है, लेकिन हम सोचते नहीं कि हम कहते क्या हैं। हमारे पास 5 साल का बच्चा खड़ा हो तो हम कोई बुरा कर्म नहीं करते, किसी की 5 पैसे की पेंसिल चोरी नहीं कर सकते, किसी का 2 पैसे का खरबूजा नहीं तोड़ सकते कि हमें इंसान का बच्चा देख रहा है। लेकिन उस मालिक को हाजिर नाजिर कहते हुए हम दुनिया में क्या क्या पाप, क्या क्या बुरे खोटे कर्म नहीं करते। अगर हमारे अंदर सचमुच ये बात बैठ जाए कि मालिक हर जगह मौजूद है और सबके अंदर वही एक मालिक बैठा हुआ है और जो कुछ हम कर रहे हैं वह सब कुछ देख रहा है, तो हमसे कभी कोई बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। परमात्मा सब में समाया हुआ है, ये सिर्फ गुरुमुखों का कहना है, संतों महात्माओं का, मालिक के सच्चे भक्तों का कहना है जो अंदर मालिक में लीन हो चुके हैं और बाहर भी हर जगह मालिक के नूर का जहूर देख रहे हैं। ये उन गुरुमुखों की अवस्था है जिनमें मालिक का शब्द या नाम बस चुका है। उस अवस्था में पहुंचकर ना उनके लिए दुख है ना सुख है, ना ही उनके लिए मरण जन्म का, यमदूतों का या आवागमन के दुखों का भय है। जब तक हमारा मन दुनिया में फैला हुआ है तब तक हम दुनिया के दुख सुख सहते हैं। जब शब्द की कमाई से मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, फिर ना यमदूतों के साथ जाना पड़ता है, ना 84 के दुख भोगने पड़ते हैं। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि अभ्यासी को उतनी खुशी अपने शादी की नहीं होती जितनी अंत समय की होती है।
तृष्णा अगन जले संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा, मन मुख ठोर न पाए कब हू, सत गुर बूझे बुझाई है।
अब संसारिक जीवों की हालत बयान करते हैं कि वह हमेशा इच्छाओं तृष्णाओं की आग में ही जलते रहते हैं। उनकी पिछली इच्छाएं पूरी नहीं होती, आगे मन दिन रात और इच्छाएं पैदा करता रहता है। उनको मालिक सारी दुनिया का राजपाट भी क्यों ना दे दे, वह कभी मालिक से मालिक नहीं मांगेंगे। जिस मन में हमेशा इच्छाओं की अग्नि जल रही है, उसको शांति किस तरह मिल सकती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, वेणतुद होर जे मंगना सिर दुखां के दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। हे परमात्मा, अगर हम तेरे स्वाय, तेरे नाम के स्वाय तो इससे दुनिया की और चीजें मांग रहे हैं तो हम दुखों और मुसीबतों को मांग रहे हैं। लेकिन गुरु साहब समझाते हैं कि सच्ची शांति, सच्चा सुख कहाँ है और उसे किस तरह प्राप्त करना है, इसकी समझ भी संतों से, गुरुमुखों से, मालिक के भक्तों और प्यारों से प्राप्त होती है। उनकी संगत में जाकर ही पता चलता है कि सच्चा सुख, सच्ची शांति केवल मालिक की भक्ति में, मालिक के शब्द और नाम में है।
सतगुर सेवन से वड़े पागी, साचे नाम सदा लिव लागी, अंतरे नाम रवे आने के तृष्णा शब्द बुझाई है।
आप फरमाते हैं कि वह बड़े खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव हैं, उनका देह में आना मुबारक है, उनका इंसान का जामा हासिल करने का असली मकसद पूरा हो जाता है जो सतगुरु के उपदेश के अनुसार उठते बैठते चलते फिरते अंतर में शब्द से लिप जोड़ कर रखते हैं। जब उनके अंदर नाम का प्यार बस जाता है तो वह प्यार उनके अंदर से दुनिया का हर तरह का प्यार निकाल देता है। ये रचना का मोह या प्यार है जो हमें बार बार देह के बंधनों, 84 के दुखों में खींच कर लाता है। जो गुरमुख अंदर नाम में लीन हो जाते हैं वह नाम का रूप हो जाते हैं, फिर वह अपने आप संसार और संसार की इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। जिनको अपने अंदर शब्द की लज्जत मिल जाती है उनका ख्याल कभी संसार की लज्जतों की तरफ नहीं जा सकता।
सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरले किने पछाणी, सच्चे शब्द रते बैरागी, आवन जान रहाई है।
आप फरमाते हैं कि संसार में केवल शब्द सच्चा है, वाणी सच्ची है। उसको सच्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस शब्द ने दुनिया की रचना की है, उसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं और वह शब्द या नाम कभी नाश नहीं होता। ये रचना जो कुछ हम आंखों से देख रहे हैं 5 तत्वों की बनी हुई है। जब 5 तत्वों को ही नाश हो जाना है तो इनसे बनी हुई चीजें कैसे कायम रह सकती हैं? जिस शब्द की गुरु साहब महिमा करते हैं उसने 5 तत्वों को पैदा किया है। वह 5 तत्व नाश हो जाते हैं लेकिन उनको पैदा करने वाला शब्द कभी नाश नहीं होता। मैं पहले कह के आया हूँ कि गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। वह मालिक शब्द या नाम के जरिए ही दुनिया की रचना करता है, शब्द या नाम के जरिए ही इसको नाश करता है और फिर शब्द या नाम के जरिए ही दोबारा इसकी रचना करता है। आप उस शब्द या नाम को ही गुरु की बाणी, धुर की बाणी, सच्ची बाणी कह देते हैं और कई लफ्जों के द्वारा उसको बयान करते हैं। जिस शब्द या वाणी की गुरु घर महिमा करता है, ये वह वाणी है जिसके बारे में मैंने पहले अर्ज की है कि वह परमात्मा का रूप है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, वाणी वज्जी चौहों जुगी सच्चो सच सुनाए। वह वाणी युगों युगों से सच चली आ रही है, वह वाणी कभी नाश नहीं होती, वह वाणी लिखने पढ़ने और बोलने में नहीं आ सकती, वह वाणी हमारे हर एक के अंदर दिन रात धुनकारें दे रही है। गुरु रामदास जी कहते हैं, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। वह अंदर की वाणी, वह सच्ची वाणी हम सबका गुरु है और गुरुमुखों का असली स्वरूप भी वह वाणी या शब्द है। दे तो सेवक को भी यहीं छोड़ देनी है और गुरुमुखों को भी यहीं छोड़ देनी है, लेकिन जो सेवक गुरमुखों के जरिए ख्याल अंदर उस वाणी से जोड़ लेते हैं, वह वाणी उनकी आत्मा को अपने साथ लेकर सीधे परमात्मा से मिला देती है। लेकिन उस वाणी से लिव जोड़ने की युक्ति और उससे लिव जोड़कर आवागमन के बंधनों को तोड़ने की बढ़ाई बिरले गुरमुखों को प्राप्त होती है। सच्चे शब्द रते बैरागी। आप पहले भी समझा आए हैं कि हम घर बार छोड़ने से, बेटे बेटियां त्यागने से, भगवे कपड़े पहनकर जंगलों पहाड़ों में रहने से परमहंस बैरागी नहीं बनते। हम असल बैरागी उस समय ही बनते हैं जब अंदर शब्द के रंग में रंग जाते हैं। उस हालत में हमारे अंदर से माया का मोह, माया का प्यार निकल जाता है और हमारे अंदर केवल मालिक से मिलने की विरह, मालिक से मिलने की तड़प और मालिक से मिलने का वैराग बाकी रह जाता है। उस हालत में हम अपने आप मालिक में समाकर मालिक का रूप हो जाते हैं और हमेशा के लिए आवागमन के बंधनों से आजाद हो जाते हैं।
शब्द बुझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसे मन आए, सतगुरे अपना सद ही सेवे, हो मैं विचों जाई है।
आप फरमाते हैं वह शब्द निर्मल है। जब हम उस शब्द के रंग में रंग जाते हैं, हमारे मन पर जितना भी मैल चढ़ा हुआ है सब साफ हो जाता है। कौन से मैल साफ हो जाते हैं? कर्मों के, इंद्रियों के, भोगों के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, बेटे बेटियों के प्यार के, दुनिया की मान बढ़ाई के। छुरी पर कितना भी जंग क्यों ना चढ़ा हो, उसे सान पर रगड़ना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता सब जंग उतर जाता है, अंदर से छुरी साफ सुथरी होकर निकल आती है। इसी तरह जब हमारी आत्मा शब्द की शान पर चढ़ती है, इंद्रियों की सब मैलें दूर हो जाती हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई। जो हर तरफ से अपने ख्याल को निकाल कर शब्द में लीन कर देते हैं, वह खुद भी पवित्र हो जाते हैं और जब हम उनके समझाने के अनुसार अपने ख्याल को अंदर शब्द से जोड़ देते हैं तो वह हमारे ख्याल को भी निर्मल या पवित्र कर देते हैं। आप समझाते हैं कि जिनके मन से दुनिया के मैल उतर जाते हैं, जिनके मन में निर्मल नाम बस जाता है, वह हमेशा सतगुरु के उपदेश के अनुसार मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार के रंग में रंगे रहते हैं। फिर उनके अंदर से होमे का नाश हो जाता है। आपका भाव है कि जब भी होमे का नाश होगा, सतगुरु के उपदेश के अनुसार आत्मा को अंदर शब्द या नाम में लीन करने से होगा। इसलिए आपने फरमाया था, बिन शब्दे होमे किन मारी। बिना शब्द की कमाई के ना होमे मर सकता है, ना परमात्मा से मिलाप हो सकता है और ना ही हम आवागमन के चक्रों से आजाद हो सकते हैं।
गुर ते बूझे ता दर सूझे, नाम विहुणा कथ कथ लूझे, सतगुरे सेवे की वडे आई, त्रिसना पूख गवाई है।
जब गुरमुखों की संगत में जाते हैं तो हमें अपने असली घर का, अपने असली घर के असली दरवाजे का पता चलता है, जिसके जरिए ही हम उस घर में दाखिल हो सकते हैं। मैंने खोलकर अर्ज की है कि जिसे गुरु साहब घर दर, घर का दरवाजा, मुक्ति का दरवाजा कहते हैं, जिसे ऋषि मुनि दिव्य चक्षु और शिव नेत्र कहते हैं, जिसे मुसलमान फकीरों ने नुक्ता सफेदा कहा है, वह जगह या नुक्ता हर एक की आंखों के पीछे है। वह तब मिलेगा जब हम ख्याल नौ द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे लाकर एकाग्र करेंगे। जिस नाम का गुरु साहब जिक्र करते हैं, वह नाम भी हमें आंखों के पीछे आने पर मिलेगा। जब तक आंखों के पीछे आकर अंदर उस शब्द या नाम को नहीं पकड़ते, हम कभी अपना रूहानी सफर तय करके वापस अपने घर नहीं पहुंच सकते। जब तक हम उस नाम से नहीं जुड़ते, हमारी इच्छाओं तृष्णाओं की आग नहीं बुझती और हम हमेशा ही बाहर भटकते रहेंगे, हमेशा मरण जन्म के दुखों में ही फंसे रहेंगे।
आपे आप मिले ताबू जय ज्ञान विहूणा किछु ना सूजै गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द वजाई है।
फिर उसी बात पर जोर देते हैं कि सब कुछ मालिक के अपने हाथ में है, जिसे वह देना चाहता है उसे देने का कोई ना कोई बहाना भी बना लेता है, लेकिन जब भी वह देता है गुरुमुखों के जरिए देता है। गुरु साहब उस नाम को गुरुमुखों की दात, गुरुमुखों का दान कहते हैं, कहीं उसको गुरु प्रसाद कह देते हैं। उसको दान या प्रसाद कहते हैं क्योंकि दान और प्रसाद खुशी से दिया जाता है, उसकी कोई कीमत वसूल नहीं की जाती। दाता भिखारी को दान देकर उसका मूल्य नहीं मांगता। मालिक ने शब्द की दौलत हमारे लिए हमारे अंदर रखी हुई है, लेकिन वह शब्द प्रकट केवल गुरुमुखों की बख्शिश उनकी दया मेहर द्वारा होता है।
जो तुरे लिखे आसो करम कमाया कोई ना मिटे तुर फुरमाया सत संगत मैं तिन ही वासा जिन को तुर लिख पाई है।
गुरु साहब बार बार यही समझाना चाहते हैं कि जो कुछ मालिक ने खुद धुर मस्तक में लिख दिया है वही हम कर रहे हैं, चाहे रोकर करें चाहे हंसकर करें, हमारा प्रलोभन कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन नाम की कमाई करने से हमारे अंदर कुल मालिक की बख्शिश से इतनी शक्ति आ जाती है कि हम अपने कर्मों का खुशी खुशी हिसाब दे देते हैं। और ये भी उस मालिक की अपनी मौज है कि वह सूली को सूल कर दे। जिनको उसे भवसागर से पार करना होता है उनको वह खुद ही गुरुमुखों की संगत में ले आता है।
अपनी नजर करे सो पाए सच्चे शब्द ताड़ी चित लाए नानक दास कह बेनंती पीखिया नाम दर पाई है।
वही जीव गुरुमुखों के सत्संग में आते हैं जिनके धुर कर्म में मालिक खुद लिख देता है। गुरुमुखों के सत्संग में आकर नाम या शब्द की समझ भी उनको ही आती है जिन्हें मालिक ये समझ देनी चाहता है। जो कुछ है मालिक के हाथ में है। जिन जीवों पर उस परमात्मा की दया मेहर बख्शिश की नजर हो जाती है, जो उसकी बख्शिश से फायदा उठाकर ध्यान शब्द में लगा देते हैं, उनके अंदर दुनिया के पदार्थ नहीं रहते, मालिक ही मालिक हो जाता है। सब कुछ बयान करके गुरु साहब अपनी ओर से मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारे अंदर अपने शब्द या नाम की बख्शिश कर, ताकि हमारा भी ध्यान उठते बैठते चलते फिरते तेरे शब्द से जुड़ा रहे, तेरे नाम से जुड़ा रहे। गुरु नानक साहब हमें क्या नसीहत देते हैं? नानक नाम न विसरे छूटे शब्द कमाए। भाई नाम को कभी सपने में भी ना भूलना। जब भी तू दुनिया के बंधनों से आजाद होगा शब्द की कमाई करके होगा, नाम की कमाई करके होगा। हमें भी चाहिए कि गुरु साहब के उपदेश से फायदा उठाकर ख्याल को हमेशा अंदर शब्द से जोड़कर रखें, नाम से जोड़कर रखें।
अपनी नजर करे सो पाए, सच्चे शब्द ताड़ी चित लाए, नानक दास कह बेनंती, भिखिया नाम दर पाई है।